ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हर शनिवार की तरह। तो आज विशेष दिन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव का अर्थ है तिरोहित होना, मतलब इस जगत से चले जाना, यही जगत से अप्रकट हो जाना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हैं, और ये जो ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उसके प्रमुख आचार्य हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जानना, उनके कार्यकलापों को समझना इस आंदोलन में जो भी भक्त हैं उसके लिए परम आवश्यक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में जब श्रील प्रभुपाद को पूछा जाता था कि श्रील प्रभुपाद बताइए, आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं अपने गुरु महाराज का क्या वर्णन करूंगा, वो तो ही इज अ वैकुंठ मैन। वो कहते थे कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो सर्वसामान्य जीव नहीं है, क्योंकि सर्वसामान्य जीव में और भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद है, भगवान के जो उन्नत भक्त है, उनमें बहुत अधिक अंतर है। क्योंकि हम सब बद्ध जीव इस जगत में आते हैं अपने अपने कर्मों का उपभोग करने के लिए। श्रीमद् भागवतम गीता है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्तये, कि इस जगत में जो जीव है अपने जो अपूर्ण जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, भोग करने के जो डिजायर्स हैं उनकी पूर्ति करने के लिए इस जगत में आता है, और इस जगत में प्रयास करता रहता है भोग करने के लिए। बल्कि वो भूल जाता है कि मैं मृत्यु के मुख में हूं। जैसे हम बचपन में थे तो हम सांप को देखा करते थे, तो सांप, एक बार सांप को देखा तो सांप ने अपने मुंह में एक मेंढक को पकड़ा हुआ था। सांप का भोजन क्या है? मेंढक को खाता है। मेंढक को उसने मुंह में पकड़ा, आधा मेंढक उसके मुंह में है। ऐसे नहीं कि वो मेंढक उस समय मर गया, मेंढक सांप के मुंह में है, आधा धीरे धीरे अंदर जा रहा है, और फिर भी मेंढक अपने जीभ बाहर निकालकर कुछ ना कुछ खाने की चेष्टा कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है, भोग करने की भावना उसके हृदय में अभी भी है। वो भूल गया कि मैं किसके मुंह में हूं, सांप के मुंह में, मृत्यु मुझे निगल रहा है। और इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। हे अर्जुन, इस जगत में जो जीव है मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, मेरी ओर उन्मुख नहीं होते, लेकिन मैं उनके पास जाता हूं। तो अर्जुन कहते भगवान कौन से रूप में जाते हैं? कहते काल या मृत्यु सर्वहरशाहम, मृत्यु के रूप में काल के रूप में जाकर मैं उनको दर्शन देता हूं। और इस जगत में जो जीव नाना प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय बिता रहा है उससे उसको दूर कर देता हूं। तो हम इस जगत में जन्म लेते हैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमें सौंदर्य मिलता है, धन मिलता है, बल मिलता है, यश मिलता है। ऐसे पांच चीजों का वर्णन शास्त्र कहते हैं कि पूर्व जन्म के अनुसार आपको चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं वो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं। उनका जन्म लेना और हमारा जन्म लेना बहुत अधिक अंतर है। जिस प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः देखत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म को, मेरे कार्यकलापों को और इस जगत से अप्रकट होने के बारे में जो जानता है, यथावत जानता है, यथारूप तत्व से जो जानता है, वो पुनः इस भौतिक कष्टमय जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। तो जिस प्रकार से भगवान के जन्म, उनके कर्म दिव्य है, कार्यकलाप, कृष्ण का जन्म सूर्य के समान है। ये नहीं कि सूर्य आज जन्म ले रहा है और सूर्य शाम के समय में मरता है, ऐसे नहीं। सूर्य उदित होता है और अस्त होता है। तो उसी प्रकार से भगवान है, उसी प्रकार से भगवान के जो महान भक्त हैं, न कर्म बंधनम वैष्णवानाम च विद्यते, न कर्म बंधनम, भगवान के जो भक्त हैं इस भौतिक जगत के कर्म आदि से बंधे हुए नहीं है। हम सब जीव ये जगत में कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं और इन कर्मों के बंधन के कारण हम प्रयास कर रहे हैं भोक्ता बनने का, एंजॉयर बनने का, कंट्रोलर बनने का, स्वामी बनने का, लेकिन फिर भी हम नहीं बन पाते। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु ना आए, कि वैष्णवों को जन्म मृत्यु नहीं है। वो इस जगत में होते हैं तभी भी वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त है और इस जगत से चले भी जाते हैं तो वो भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं, हाँ, भगवान का जो धाम है गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान का जो धाम गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, वहां उनकी नित्य सेवा में रत रहते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो इस जगत में प्रकट होते हैं, आते हैं, तो उसको आविर्भाव कहते हैं। और जब इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं तो उसे तिरोभाव कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जन्म होता है और हमारा मृत्यु होता है और फिर से पुनर्जन्म होता है। लेकिन भगवान के महान भक्तों के लिए ये जो सिद्धांत है ये लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्त इस जगत में जब जन्म लेते हैं तो वो केवल एक कारण के लिए। क्या है वो कारण? क्योंकि भगवान कृष्ण को जब हम प्रणाम करते तो उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो भगवान तो करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। और दूसरा क्वालिटी क्या है उनमें? दीन बंधु, जो फॉलन सोल है, दीन है, दुखी है, दयाद्र जो जीव है, दीनहीन, उनके प्रति भगवान के हृदय में दया की भावना है, इसलिए दीन बंधु कहा गया है। तो ऐसे परम भगवान कृष्ण के अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा भरी हुई है और वही करुणा जब एक मूर्तिमान रूप को धारण करती है उसको हम भक्त कहा जाता है या आचार्य कहा जाता है या उसे गुरु कहा जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के नाम के सामने हम क्या लिखते हैं? श्री कृपा, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण की कृपा जब मूर्ति को धारण करती है, श्री मूर्ति विग्रह का फॉर्म लेती है, हाँ, तो वो जिसे गुरु कहा जाता है या आचार्य कहा जाता है या डिवोटी कहा जाता है। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो महान आचार्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु के इस महान आंदोलन की पुनर्स्थापना करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करने के लिए इस जगत में प्रकट हुए हैं। तो हम सब बद्ध जीवों के लिए उनके कार्यकलापों को समझना, उनके कार्यकलापों का श्रवण करना, उनके कार्यकलापों की चर्चा करना ये बहुत अधिक प्यूरिफाइंग है, शुद्ध करने वाला है। हम सबका हृदय बहुत अधिक मलिन है, हाँ, दिन रात नाना प्रकार के विचारों से हमारा हृदय अशुद्ध भावनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो अर्जुन कहते कि हे कृष्णा, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। भवान मीन्स आप। हे कृष्णा, आप कैसे हो? परम ब्रह्म हो, सुप्रीम पर्सन हो। परम ब्रह्म परम धाम, आप परम, आपका धाम है, और आप परम पवित्र हो। तो परम पवित्र का संग प्राप्त करना है तो हमें पवित्र होना होगा। तो पवित्र होने के लिए कई सारे उपाय हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम उपाय प्रदान करते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता। भगवान का ये जो पवित्र नाम है इसका उच्चारण करना ही पवित्रता का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन इसके अलावा आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति बहुत सरलता से पवित्र हो सकता है जब वो क्या करे, सुनवतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रुदंतस्तो ही अभद्राणि विधुनुति सुरत सताम। सुनवता सो कथा, कृष्ण कहते भागवतम में कि मेरी कथा सुनो। सो मीन्स मेरी। अभी हम भगवान की कथा सुनने के लिए इतने उत्साहित नहीं होते, इतने लालायित नहीं होते, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में चर्चा करता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। सो कथा, तो भगवान भी अपने बारे में सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं और भगवान भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनके बारे में श्रवण कर रहा है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कानों के छेदों से भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं। और भगवान कहते जो व्यक्ति मेरे कथा को सुनने में लगा रहता है या मेरे भक्त का चरित्र सुनता है तो उस व्यक्ति के हृदय में मैं प्रवेश करता हूं, खाली हाथ प्रवेश नहीं करता हूं। भगवान कहते कि मेरे हाथ में झाड़ू होता है, झाड़ू को लेकर मैं जाता हूं अंदर, क्लीन करने लगता हूं उसके हृदय की सफाई। हाँ, बाहरी रूप से तो हम अपने आप को कई प्रकार से श्रृंगार कर सकते हैं, सोप है, क्रीम्स हैं, हाँ, बहुत बॉडी लोशंस वगैरह हैं, उनसे सजाते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन आंतरिक सफाई के लिए हमें कृष्ण से संबंधित कार्यों की सहायता लेनी होगी। कृष्ण के संबंधित कार्यों के द्वारा ही हमारी शुद्धि हो सकती है। भगवान का नाम है, भगवान के भक्त हैं, तुलसी है, गंगा है, कृष्ण कथा है, भगवद गीता है, भागवतम है, हाँ, हरि नाम है, तो ये सब चीजें हमारे आंतरिक शुद्धि के लिए हैं। इसके साथ ही साथ आचार्यगण कहते हैं वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र। भक्तों का जो चरित्र है, भगवान के जो भक्तों के जो कार्यकलाप है, उनका जो लाइफ है, उसको जब हम सुनते हैं हाँ तो हमारे अंदर कई गुण आते हैं। जिसके बारे में आप सुनोगे वो गुण आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, ये निश्चित है। लोग आजकल क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, हाँ, इनके बारे में सुनते रहते हैं, उनके बारे में अपडेट चाहते हैं कि अरे अरे रूमर्स नहीं, मूवी स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, क्या रूमर्स है उनके लाइफ में, उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन जब उनके बारे में हम सुनते रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो कुछ और हमारे हृदय में विकसित नहीं होगा। काम वासना के अलावा, भौतिक भोग की वासना के अलावा हमारे हृदय में कोई और गुण प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उनका चरित्र तो दुर्गुणों से भरा पड़ा है। जब ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के बारे में हम सुनेंगे तो केवल हमारे हृदय में दुर्गुण ही बढ़ेंगे, कोई और चीज नहीं बढ़ सकती। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में जब हम श्रवण करते हैं अटेंटिवली, गंभीरता से जब चर्चा आदि करते हैं, निष्कपट होकर, अहंकार, गर्व, घमंड आदि को त्याग कर, तो वो जो भक्तों में गुण है वो गुण हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और वो गुण हमारे हृदय में संचारित हो जाते हैं। विशेष रूप से कौन सा गुण? दृढ़व्रता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। क्योंकि भगवान के भक्तों में तो असंख्य गुण है, जो भगवान में गुण है वही सारे गुण भगवान के भक्तों में है। हाँ, तो वो जो गुण है जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं, उनके कार्यकलापों की चर्चा करते हैं, तो एक चीज हमारे हृदय में आती है, वो क्या? भगवत भक्ति करने के लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। हाँ, जैसे महान महान आचार्य ने भगवान का भजन किया, वो भगवत सेवा में, भगवत नाम आदि में कितने अधिक दृढ़ थे। जब हम उनके कार्यकलापों को सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम भी, क्योंकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या है, बहुत अधिक ढीले हैं, गंभीर नहीं है। हमारा तो ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मंदिर जाए कभी माया में जाए, कभी इधर जाए, कभी हरि नाम तो कभी कुछ और। हाँ, तो लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में सुनना ही उनका संग है। उन्होंने दिए हुए जो गाइडलाइंस है, उन्होंने दिए जो ग्रंथ है, उनका अध्ययन करना ही उन आचार्यों का संग है। तो ऐसा जब हम इन वैष्णवों के चरित्रों से सुनते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे हृदय में दृढ़ता आती है, और दूसरा गुण हमें हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। कई बार हम सोचते कि अरे ये सब महान भक्तों ने किया था, ये सब चीजें, उनकी इतनी आसक्ति भगवान के प्रति थी, लेकिन नहीं, वो चीज हम अचीव कर सकते हैं यदि हम उनके अनुगत होते हैं, और उनके जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है, उनका यदि पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी महान भक्त बन सकते हैं। और ये मनुष्य जीवन हमें केवल एक ही चीज बनने के लिए दिया है। इस जगत में हम जन्म लेते तो हमारे माता पिता हम जो नहीं चाहते वो हमें बनाने के लिए लगे रहते हैं। बेटा तुम्हें ये बनना है, बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, पिता कहते नहीं वकील बनना है तुम्हें, तो पूरा एक दूसरे को बनाते रहते हैं। ये जगत में क्या है, एक दूसरे को बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जीवन मिला है केवल भगवान का भक्त बनने के लिए। बाकी चीजें उसमें इंक्लूड है, भक्त बनते हैं तो उसमें बाकी चीजें इंक्लूड है। 1000 की नोट है तो उसमें 100 रुपए की, 500 की, 1 की, 10 की, 50 की, सारी इंक्लूड है उसके अंदर है। उसी प्रकार से जब हम भक्त बनते हैं तो बाकी सारे जो पोजीशन है, जो अचीवमेंट्स है हमारे लाइफ में, वो इंक्लूड है, क्योंकि भगवान के भक्तों के पास सारी चीजें हैं, सारे पद हैं। युधिष्ठिर महाराज कौन थे? कृष्ण के महान भक्त थे। भक्त के अंदर क्या था? वो राजा थे कि नहीं? अम्बरीश महाराज। तो जितने भी भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि हम निठल्ले बने, इनएक्टिव बने, कुछ कार्य ही ना करें। भक्त मीन्स सुपर एक्टिव, सुपर डायनामिक लाइफ। भगवत गीता क्या सिखाती है? डायनामिक लाइफ सिखाती है, ये भगवत गीता का निष्कर्ष है, सार है। हाँ, लेकिन डायनामिक लाइफ गधे के समान नहीं होना चाहिए। गधा भी डायनामिकली दिन रात मेहनत करता है। हाँ, तो लेकिन अर्जुन निठल्ले बनना चाह रहे थे, अर्जुन पशु के समान वन में जाकर एक एक्स्ट्रा प्राणी बनना चाह रहे थे, और युद्ध आदि को त्यागना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, हाँ तुम्हें युद्ध करना होगा, लेकिन कैसे करना होगा? महामानुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। यह है कला, यह है कृष्ण भावना, यह है भगवत भक्ति। हाँ, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यद्यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे अर्जुन, जो तुम खा रहे हो पी रहे हो मुझे अर्पित करते हुए इन सारे कार्यों को करो। हाँ, तो ये भगवत भजन है। तो इस प्रकार से ऐसे आचार्यों का जो जीवन है, जिसको हम सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम न चाहते हुए भी आध्यात्मिक दिव्य गुणों को विकसित करते हैं, न चाहते हुए भी हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं संगे आये सेना संगे जाये न तथा है। ऐसे भगवान के भक्त भगवान के संग आते हैं और इस जगत से भगवान के संग वापस चले जाते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आप उनसे परिचित होंगे, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी, हाँ श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हैं। हाँ, जिनका आविर्भाव या जिनका प्राकट्य 6 फरवरी 1874 में हुआ था जगन्नाथपुरी में, तो इनके प्राकट्य के विशेष कारण है। स्वयं भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं जो भक्त है वो मेरे निज जन है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति के बहुत रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत पहचान हो सकती है पूरे फरीदाबाद में, लेकिन उसके अपने क्लोज लोग होते हैं जिनमें उसका बहुत अधिक भरोसा है ना। वो अपने हृदय को उसके पास ओपन करता है, हार्ट को खोलता है, अपने हृदय की बातें बताता है, शेयर करता है। तो वैसे ही भगवान इस जगत में तव निज जन कोन महाजने पाठाइया दिल तुमी, भगवान अपने सबसे प्रिय लोगों को इस जगत में विशेष कार्य करने के लिए भेजते हैं और उनको विशेष शक्ति प्रदान करते हुए भेजते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिता थे जिनका नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, क्या नाम था? भक्ति विनोद ठाकुर। तो वास्तव में किसी व्यक्ति को भक्ति विनोद ठाकुर को जानना है, भक्ति विनोद को समझना है, तो उसे किसको समझना होगा? पहले भक्ति सिद्धांत को समझना होगा। भक्ति विनोद का अर्थ दूसरा क्या है? लीला, पास्ट टाइम्स। तो व्यक्ति को किसी को लीला समझना है तो उससे पहले व्यक्ति को फिलोसफी सिद्धांत समझना होगा। और सिद्धांत क्या है? भगवत गीता है, और भागवत वास्तव में लीला चरित्र है। और किसी व्यक्ति को भक्ति सिद्धांत को समझना है तो सर्वप्रथम उसे किसको समझना होगा? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। तब वास्तव में व्यक्ति के अंदर वो क्वालिफिकेशन योग्यता आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समझने के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, जहां लागे कृष्णेर सदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को समझने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। कलयुग के लोग इतने आलसी हैं, भगवत गीता खोलते ही नींद आना शुरू हो जाती है, पढ़ते रहेंगे लेकिन कहते कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तो कलयुग के लोगों का ये लक्षण है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रता, कि वो मंद है, मंद भाग्य है उनका, और उनके पास ऐसी इतनी बुद्धि नहीं है। तो जब शास्त्रों को हम कब समझ पाते हैं? भक्तों के संग में जब हम गंभीरता से हरि नाम का जप करते हैं तो फिर जो शास्त्र है हमें समझ में आने लगते हैं। और जब हम समझ में ना भी आए लेकिन हम यदि दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरी एक ही कंप्लेंट है भक्तों को कि वो इनफ मात्रा में ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते, और हम तो पढ़ते ही नहीं। हाँ, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं, लेकिन एक तो है कि हम पढ़ते ही नहीं। तो जब कृष्ण देखते हैं कि एक व्यक्ति हरिनाम का उच्चारण कर रहा है और नियमित रूप से भगवद गीता श्रीमद भागवतम आदि को पढ़ रहा है, तो कृष्ण अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं। भगवद गीता के तात्पर्य में आप देखेंगे, हाँ, चैतन्य चरितामृत के भी, जहां प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति ग्रंथ को खोल के पढ़ता है, मुझे जानना चाहता है। भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूं ऐसे व्यक्ति को? फिर बुद्धि देता हूं, ददा में बुद्धि योगम तम ये न मामो पयांतिते। क्योंकि इस जगत में हजारों लोग हैं भगवान के अलावा सारी दुनिया को जानना चाहते हैं। हाँ, जो जनरल नॉलेज है, ये है वो है, कितनी सारी चीजों को जानना चाहता है व्यक्ति। हाँ, पॉलिटिक्स के अफेयर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति की रुचि नहीं है भगवान को जानने के लिए। क्योंकि बाकी जगत के सारी चीजों को जानने में हमारी कोई भलाई नहीं है, लेकिन जब हम भगवान को जानते हैं तो भगवान कहते हैं यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, मुझे जानना है मेरे धाम में वापस आना है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है तो भगवान उसको आवश्यक बुद्धि देते हैं और उस बुद्धि के द्वारा और अधिक डीपली वो भगवान को समझने लगता है। और ये मनुष्य जीवन केवल भगवान को जानने के लिए मिला है, सर्वप्रथम अपने आप को जानने के लिए मिला है और दूसरा है परम भगवान कृष्ण को जानने के लिए मिला है। इसलिए जो वेदांत सूत्र है व्यासदेव ने जिसकी रचना की, तो उसका पहला सूत्र यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, सूत्र थोड़ी सी बात, तीन शब्दों में बहुत सारी चीजें बोल दी उन्होंने। सूत्र का मतलब है थोड़े से शब्दों में बहुत सारा पूरा शास्त्रों का सार बता दिया। तो पहला सूत्र क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस व्यक्ति के पास मनुष्य देह है उसको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म मीन्स भगवान भी है, ब्रह्म मीन्स आत्मा भी है, तो अपने आप को जानना चाहिए। तो फिर अगले सूत्र में वो कहते हैं जन्मादर्शयतः, तो जो ब्रह्म है वो कौन वस्तु है जिनसे सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। जो ये जान लेता है कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के उत्पत्ति का कारण हूं, वो मेरा भजन करता है और वो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसलिए व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए भगवान को जानने के लिए या सिद्धांत को जानने के लिए। तो भगवद गीता क्या है, सिद्धांत है, संबंध ज्ञान है भगवद गीता, जिसमें भगवान स्थापित करते हैं आप कौन हो, प्रकृति कौन हो, कौन है भगवान, कौन है, इनका आपस में संबंध आदि क्या है। तो इस प्रकार से हम वास्तव में सिद्धांत को जानने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। दूसरे अर्थ में यदि समझे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जानने के लिए व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज का जीवन अतुलनीय है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिता हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो जगन्नाथपुरी में वो मैजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के समय में, जब जगन्नाथपुरी में उनको शिफ्ट हुए हैं तो पूरे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके वो इंचार्ज थे और कई दिन उन्होंने वहां बिताए। और एक दिन भगवान जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर के स्वप्न में आकर कहते कि हे भक्ति विनोद, मैं तुम्हें यहां इसलिए नहीं लाया हूं कि तुम अपने लीगल एक्टिविटीज में मग्न रहो, मैं तुम्हें यहां जगन्नाथपुरी में लाया हूं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का, ये जो हरि नाम है, हरि नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से इस हरि नाम का फिर से प्रचार प्रसार करने के लिए लाया हूं, तो तुम इसको करो। कहा लीगल मैटर्स के कार्य में फंसे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर सुबह उठते हैं और उन्होंने कहा अरे जगन्नाथ स्वयं स्वप्न में आकर मुझे आदेश प्रदान करते हैं। तो उस भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करते कि हे जगन्नाथ देव, मैं क्या हूं, एकाकी आमार नाही पाए बल, मैं अकेले हूं और चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना मेरे लिए असंभव है। अरे बोल, 10 मिनट के बाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हे जगन्नाथ, मैं तो अकेला हूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, आप क्या करो, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो आपकी किरण हो, रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण, एक ऐसा पुत्र मुझे दो कि जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है वो फिर से स्थापित कर सके। तो भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की एक महान भक्त ने, और वास्तव में गृहस्थ का ये आइडियल प्रार्थना है, होनी चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ है उसकी भावना क्या होनी चाहिए अपने बच्चे आदियों के प्रति, कि वो भक्त बने। इस संसार में तो हजारों बच्चे पैदा कर रहे हैं जनता, लेकिन कोई भगवान के भक्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब बालक थे तो उनके पिता साधुओं को अपने घर में बुलाते थे और उनको प्रसाद आदि खिलाकर एक ही प्रार्थना करते थे कि आप सब एक आशीर्वाद दो मेरे बेटे को कि वो राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। क्या बने, राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। हम क्या आशीर्वाद चाहते, ये विदेश चला जाए और इनको रोते हुए छोड़ दे यहां, इतनी भयावह स्थिति है। बच्चे चले जाते हैं विदेश में, माता पिता कोई है नहीं देखने के लिए, मैं भी धन आदि है वो सुख नहीं दे सकता। हाँ, तो ये हमारी कामना है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने यही प्रार्थना की और कालांतर कुछ समय के बाद उनकी जो पत्नी है जिन्होंने एक बालक को जन्म दिया, और उस वो बालक कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका नाम उन्होंने बचपन में रखा था विमला प्रसाद। क्या नाम रखा था, विमला प्रसाद। क्योंकि विमला प्रसाद क्यों हो, क्योंकि जगन्नाथ पुरी में जो भी जगन्नाथ को कई सारे भोग अर्पित किए जाते हैं, जब भगवान जगन्नाथ उस भोगों को स्वीकार करते हैं, हजारों प्रकार के व्यंजनों को खाते हैं, तो उसके बाद जो प्रसाद निकलता है, सबसे पहले वहां जो पार्वती देवी है, पार्वती देवी का दूसरा नाम विमला देवी है, जो ब्रज वृंदावन में विमला नामक गोपी है, उनको दिया जाता है, और फिर उसके बाद सारे जगत को वितरित किया जाता है। क्योंकि पार्वती देवी भगवान कृष्ण का प्रसाद खाने के लिए लालायित थे, जिनके लिए भगवान ने कहा मैं अवतरित होऊंगा, तो भगवान जगन्नाथ के रूप में आए थे और कहा कि प्रसाद क्या, अनलिमिटेड प्रसाद, वो चाहते थे मुझे भी प्रसाद मिले और सारा जगत भी आपके प्रसाद को, आपके औचित्य को ग्रहण करके हाँ भगवत धाम को प्राप्त कर सके बड़े सरलता से। तो जब भगवान जगन्नाथ के द्वारा उनको ये पुत्र प्राप्ति हुई, तो वो विमला देवी के माध्यम से उसको स्वीकारते हैं, और जिसके कारण उनका नाम क्या रखते हैं, विमला प्रसाद। हाँ, विमला का प्रसाद है। तो ऐसे विमला प्रसाद छोटे से बालक थे, जब छोटे से बालक थे, तो उस समय जब जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर जगन्नाथपुरी में मेन रोड में था, जहां से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ निकलते हैं, तीन बड़े बड़े विशाल रथ, जो रथ जगन्नाथ जी का भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने गया, तो वहां जाकर रुक गया, तीन दिन के लिए रुक गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ भी अपने ऐसे महान भक्त का दर्शन करना चाह रहे थे। भगवान तो कौन है, उनकी इच्छा के आगे किसी के नहीं चलती, वो जहां रुक जाए, आप हजारों हाथी लगाओ, घोड़े लगाओ, कार्स लगाओ, रथ को खींचने के लिए रथ अपने स्थान से टस की मस नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता। तो वो रुक गए, तो जगन्नाथ वहां वेट कर रहे थे कब मेरा भक्त आएगा। जैसे भगवान श्रीनाथ जी या गोपाल गोवर्धन में झाड़ियों के अंदर थे, और वही किसका इंतजार कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी का, कब वो माधवपुरी आएगा, माधवेंद्रपुरी आएगा और मुझे यहां से निकालेगा। तो भगवान भक्त का इंतजार करते हैं, भगवान भक्त को सदैव देखना चाहते हैं। जैसे लोग कहते ना, ये मेरा बच्चा मेरे आंखों का तारा है, नहीं, आप मेरे आंखों के तारे हो, तो वैसे ही भगवान के आंखों का तारा कौन है, डिवोटीज है, उनके प्रेमी भक्त है, उनके प्रिय भक्त है। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी उनके घर के सामने रुकते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो पत्नी है वो लेके आती है विमला प्रसाद को, जिनको लाती है और जगन्नाथ के रथ में चढ़ते हैं। वो मैजिस्ट्रेट की पत्नी है, सबसे बड़ा पद सब जगहों में, कौन रोकेगा रथ के ऊपर चढ़ने के लिए। सीधा बालक को लेकर जगन्नाथ के रथ पर चढ़ती है, जगन्नाथ के सामने रखती है। जैसे जगन्नाथ के चरणों में इस छोटे से बालक को रखा, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ के गले से माला गिर जाती है और उस बालक के ऊपर गिरती है। तो वास्तव में भगवान जगन्नाथ अपने इस भक्त को क्या कर रहे थे, शक्ति संपन्न कर रहे थे कि क्या करना है आगे चलकर, कृष्ण भावना का उन्हें प्रचार करना है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भगवत सेवा में बहुत अधिक दृढ़ थे। वो इतने बड़े विद्वान थे कि पूरे पृथ्वी में उस समय उनसे अधिक कोई बुद्धिमान या विद्वान नहीं था। वो एक बार किसी किताब को पढ़ेंगे तो दोबारा उसको पढ़ते नहीं थे, 10 साल के बाद भी उस बुक में से कोई पैराग्राफ आप बोलो बताने के लिए तो उसको बोल सकते थे, बहुत तेजी से बोल सकते थे, इतने बड़े विद्वान थे। उस समय कहा जाता था कि वो चलते बोलते इंसाइक्लोपीडिया है, चलते बोलते शब्दकोश है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे जिन्होंने 7 साल के आयु में पूरी भगवत गीता कंठस्थ कर दी थी। सोते हुए आप उठाओगे, अरे बच्चे भगवत गीता बोलो, तो बोलता रहेगा। हम किसी को सोते हुए उठाओगे तो रोता रहेगा। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने अपने 11 साल की आयु में ग्रंथ लिख दिया, प्रह्लाद चरित्र नाम का इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने अपनी कौन सी आयु में लिख दिया, 11 साल की आयु में। तो ऐसे विशेष शक्ति संपन्न थे और भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति उनका बहुत अधिक गहरा अनुराग था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिता एक बार वो लेकर आते हैं मैंगोज, आम लेके आते हैं, टेबल में रखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत छोटे से थे, वो जाते सीधा आम खाना शुरू करते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कहते, अरे विमला प्रसाद, ये आम भगवान को अर्पित हुए थे क्या? कहते नहीं, तुमने खा लिया, भगवान को बिना अर्पित किए। तब से उन्होंने, 4 साल के थे, कितने साल के,
4,
तब से उन्होंने सोचा और प्रतिज्ञा की पूरे जीवन में भी फिर से कभी आम खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है, भगवान को अर्पित न किए हुए हैं मैंने आम को खाया है अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए। वास्तव में हम जी किसके लिए रहे हैं? जिह्वा का जो अगला भाग है ना, उसके लिए जिए हैं। लोग कहते ना पेट भरने के लिए जी रहे हैं, नहीं, पेट तो भर रहा है फिर वो खाली हो जाता है, लेकिन वास्तव में जी रहे हैं जिह्वा का जो अग्रभाग भाग है उसकी पूर्ति करने के लिए, और कुछ नहीं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का दृढ़ता, इस प्रकार की भगवान के प्रति सेवा की भावना जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज में थी। तो इतने बड़े विद्वान थे, तो उनके जो पिता थे भक्तिनाथ ठाकुर ने उन्हें कहा कि आप क्या करो भक्ति, आप क्या करो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करो। उनके वो ऐसे गुरु थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति इस पर निर्भर नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितने बलवान हो, कितने फेमस हो, कितने अपने आपके अंदर स्किल्स हैं, इससे भक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति तो हृदय का अफेयर है कृष्ण के साथ, भक्ति ये इन सब चीजों पर निर्भर नहीं है। इसलिए ऐसे जो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज थे वो कृष्ण के महान भक्त थे, उनके पास भक्तिनाथ ठाकुर ने भेजा और कहा कि जाओ उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो वो गए, उन्होंने कहा मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो मैंने पहले भी ना एक को दीक्षा दी थी और वो भी मुझे धोखा दे के चला गया। लोग क्या करते ना, दीक्षा लेते और भक्ति नहीं करते, वो सोचते कि दीक्षा लेना ही सिद्धि प्राप्त करना है। नहीं, दीक्षा लेना मीन्स भक्ति में एडमिशन लेना। दीक्षा का दिन आपके भक्ति का पहला दिन है, एडमिशन आपने किसी मोमेंट में ले लिया और फिर आप भक्ति शुरू कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे दीक्षा दे दो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा, यदि वो हाँ कहेंगे तो आपको मैं अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। तो वो दूसरे दिन गए, आपने पूछा क्या भक्त चैतन्य महाप्रभु को? कहते अरे अरे मैं भूल गया, उनको पूछना क्या गया, भूल गया। ऐसे कई बार वो गए, हर बार वो कहते थे भूल गया। फिर उन्होंने बहुत रोने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने कहा कि मेरे इस जीवन का क्या लाभ, अपनी युवा अवस्था का, अपनी विद्वत्ता का, सब चीजों का, यदि ये शरीर, ये विद्वत्ता, ये युवा अवस्था कृष्ण की सेवा करने के लिए इस्तेमाल ना हो, कृष्ण की सर्विस में ये यूज नहीं है होगी, तो ऐसे मेरे इन सारे गुणों का क्या लाभ है। तो फिर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब वो 31 साल के थे अपने आयु में, तब उन्होंने एक विशेष व्रत अपने जीवन में लिया था, और वो क्या था, 10 साल के लिए उन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ किया था। शतकोटि नाम यज्ञ का मतलब है रोज 3 लाख नामों का जप करना। 3 लाख नाम कितनी माला हो गई, 192 ना, हाँ, रोज 192 मालाओं का जप करना, कई घंटे भगवान के नामों में डूब जाना। उन्होंने मायापुर में एक कुटिया बनाई और उसके अंदर बैठकर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को सामने रखा, सुबह से रात्रि तक उनकी जीवा से 10 साल के लिए क्या निकलता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसा उन्होंने हरि नाम का उच्चारण किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में मेरा, मुझे प्राप्त करना बहुत सरल है, यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य रूप से मेरा स्मरण करता है वो मुझे सरलता से प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में कई सारी घटनाएं हैं, और वो विशेष रूप से हाँ, उन्होंने इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार बहुत अधिक रूप से किया। उन्होंने पूरे भारत वर्ष में 64 गौड़िया मठों की या मंदिरों की स्थापना की, बर्मा आदि देशों में भी। और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा था लंदन वगैरह में प्रचार करने के लिए। वो चाहते थे हाँ कि प्रचार पूरे विश्व में हो। वो कहते थे इस जगत में किसी चीज की कमी है तो कृष्ण भावना की कमी है। ये कृष्ण भक्ति सब तक पहुंचेगी तो लोग सुखी होंगे, अन्यथा उनके जीवन में सुख शांति के लिए कोई और उपाय नहीं है। तो जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कलकत्ता में उल्टा डंगा जंक्शन में जो एरिया है वहां प्रवचन दे रहे थे एक छत के ऊपर, तो श्रील प्रभुपाद जब 20-22 साल के थे अपने युवा अवस्था में गए वहां, तो जब वो प्रवचन में बैठने वाले थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने हाथ किया, ऐसे हाथ करते हुए कहा कि अरे तुम तो नव युवक हो और तुम अंग्रेजी इतना अच्छा जानते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की ये जो वाणी है, गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसका प्रचार अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते हो, पाश्चात्य जगत में इस संदेश को ले जाओ, इस मैसेज को ले जाओ, भगवत गीता भागवतम और हरि नाम को। तब से उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने उनके इस उपदेशों को स्वीकारा और उनकी आज्ञाओं की पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अपना लाइफ लगाया। ये विशेषता है, सफलता का रहस्य है आध्यात्मिक गुरु के वचनों की सेवा करना, जिसमें सारी सिद्धि छुपी हुई है। और कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र काम करता है, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कुतोपि। भगवान के जो महान भक्त है या गुरु है उनकी कृपा से ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है, और उनकी कृपा हमारे जीवन में नहीं है तो हम आध्यात्मिक कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन कि आप हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, जिसके द्वारा हमारा जो अनुराग है भगवान के जो पवित्र नाम है उनमें हो सके और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में श्रील प्रभुपाद की हम किसी न किसी प्रकार से सेवा कर सके। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज की एक देन है, क्या है वो देन, श्रील प्रभुपाद है ना, एक शिष्य दिया उन्होंने जिसने सारे जगत को उद्धार कर दिया। एक चंद्रमा सबको प्रकाश देता है, हजारों तारों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के दिन ही उन्होंने 1937 में अपना शरीर त्यागा था 1 जनवरी में, और वो शरीर त्यागने से पूर्व समय थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने भक्त से एक गीत को गवाया, उसको उन्होंने सुना और फिर अपने देह को त्यागा। वो गीत था नरोत्तम दास ठाकुर का, आप सबको मिला होगा, तो उसको हम गान करेंगे, तब तक भक्त लोग यहाँ भोगा वगैरह लगाएंगे। हम इस गीत को गाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद भोग ऑफरिंग और फिर पुष्पांजलि, फिर आरती होगी और फिर इस कार्यक्रम का समापन होगा। हरे कृष्णा। तो ये इस गीत की रचना श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। श्री रूप मंजरी पदम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है रूप गोस्वामी के चरणों में धूलि का कण बनना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवामृतो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तयाम। श्रीरूपमञ्जरी पद से मोर संपद, श्रीरूपमञ्जरी बोले लाउडली, श्रीरूपमञ्जरी पद से मोर संपद, से मोर से मोर भजन पूजा Thank you.
Yeah. और तिरुवा महामहोत्सव।